ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवार उल हक। लोकसभा में आज महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाया। सदन ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन में 4-4 पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। सत्ता पक्ष ने इन विधेयकों को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इनसे महिला सशक्तिकरण भी होगा और किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन इसे परिसीमन से अलग करके लागू करना चाहिए। चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वे कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध भी कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि अलग अलग सीटों के बीच जनसंख्या के असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि यह परिसीमन से ही ठीक हो सकता है और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सभी ने सदन में बोला कि वे महिला के पक्ष में हैं, लेकिन जब बारीकी से देखा जाए तो इंडी गठबंधन के सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु का उपयोग करके महिला आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी संसदीय क्षेत्र में 39 लाख की आबादी हो गई है तो कहीं 60,000 है। सांसद तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को अपना मुंह दिखा नहीं पाते, ऐसी स्थिति में कोई सांसद कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। श्री शाह का कहना था कि जब विपक्ष के लोग चुनाव में जाएंगे तो उन्हें महिलाओं का भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाए गए विधेयकों के संबंध में द्रमुक सदस्यों के तर्कों को भय फैलाने वाला बताते हुए कहा कि ये दक्षिणी राज्यों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खो दी है और अब वो द्रमुक के विमर्श के अनुसार चल रही है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व में तर्क दिया था कि आरक्षण जातिगत जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, लेकिन वो संसदीय प्रतिनिधित्व के मामले में इसे लागू नहीं करना चाहते। इन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस के नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटें बढ़ाने संबंधी गृहमंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा जताई गई आशंकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार इसका समाधान जरूर करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लोकसभा की मौजूदा सीट संख्या 543 के आधार पर ही 33% आरक्षण लागू किए जाने की विपक्षी सदस्यों की मांग पर प्रश्न किया कि जब आपके पास मौका था तो क्यों नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग आज जाति जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब वे राज्य और केंद्र में सत्ता में थे तब उन्होंने जाति जनगणना कराने का निर्णय क्यों नहीं लिया। श्री पटेल ने कहा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया चल रही है, 31 मार्च 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे, जो ये नहीं कर पाए हमारी सरकार ने करके दिखाया है। उनका कहना था कि दक्षिण भारत के राज्यों के कई सांसदों ने यह मुद्दा उठाया कि जिन दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक का महिला आरक्षण से कोई लेना देना संबंध नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी मानचित्र को ये बदलने का प्रयास है। उनका यह भी कहना था कि सरकार द्वारा जाति जनगणना को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी दल भारत की चुनावी मानचित्र बदलने में सहयोग नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका भाषण पीसी सरकार का मैजिक शो या माइकल जैक्सन का डांस जैसा था। उनका कहना था कि मुझे लगा कि आज नेता प्रतिपक्ष से माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन मुझे फिर याद आया कि आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स की कमीशन खोरी का पहली बार आरोप लगा था। श्री दुबे ने कहा कि इसी दिन 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी तथा 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की सरकार को क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गवांग से वोट कराकर इस्तीफा दिलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के लिए इस लोकसभा में कानून लाया गया तो समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के एक सांसद को पीटा गया था। श्री दुबे ने जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। पी चिदम्बरम ने कहा था कि यह देश को विभाजित करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2011 में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना 1931 से नहीं हुई है और किसी भी कीमत पर नहीं होगी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार रहे या जाए हम नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि ये तीनों विधेयक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा महिलाओं के साथ न्याय को रोकने के लिए जो आनाकानी की जा रही है उसे महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। श्री सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस किसी भी सामाजिक परिवर्तन के कदमों को रोकने का प्रयास करती है। उन्होंने प्रियंका गांधी के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा सामने आ चुकी है। तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उनका कहना था कि आरक्षण चाहे 543 सीटों पर लागू हो या अधिक सीटों पर लागू हो, तेलुगु देशम पार्टी समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या में जिस अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है उससे आंध्र प्रदेश का नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार द्वारा संसद में लाए गए विधेयकों पर उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि परिसीमन की कवायद राजनीतिक नोटबंदी साबित होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना भारतीय महिलाओं की आकांक्षाओं को देश के इतिहास की सबसे विवादास्पद और जटिल प्रशासनिक कवायदों में से एक में बंधक बनाकर रखना है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की नीयत अच्छी है तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 50% महिला आरक्षण लागू करे और प्रधानमंत्री का पद भी क्रमानुसार महिलाओं के लिए आरक्षित हो।
अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा।
लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य श्री हरिवंश को आज उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। पत्रकारिता से राजनीति में आए श्री हरिवंश का यह उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल है। श्री हरिवंश के निर्वाचन के लिए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका एस फांगनोन कोन्याक ने समर्थन किया। प्रस्ताव को ध्वनिमति से मंजूरी दिए जाने के बाद श्री हरिवंश तीसरी बार उपसभापति चुने गए। उपसभापति पद के लिए श्री हरिवंश के पक्ष में कुल 5 प्रस्ताव पेश किए गए। प्रस्ताव पारित होने के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने श्री हरिवंश के उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। इसके बाद सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से श्री हरिवंश को उपसभापति के निर्धारित सीट तक ले जाने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में श्री हरिवंश को उपसभापति की सीट तक पहुंचाया। यह सीट विपक्ष के नेता की सीट के समीप है। राज्यसभा के उपसभापति का पद श्री हरिवंश का उच्च सदन में कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। श्री हरिवंश ने 10 अप्रैल को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री हरिवंश को उपसभापति के पद पर उनके निर्वाचन पर बधाई दी। यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया है। श्री हरिवंश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना जाना अपने आप में इस बात का गहरा प्रमाण है कि सदन को उन पर कितना भरोसा है। श्री मोदी ने कहा कि सदन को अतीत में हरिवंश के अनुभव और सभी को साथ लेकर चलने के उनके प्रयासों से काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि श्री हरिवंश के नेतृत्व में सदन की कार्यक्षमता में वृद्धि देखी गई है और वह न केवल सदन का संचालन करते हैं बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से उसे समृद्ध भी करते हैं। श्री खड़गे ने उम्मीद जताई कि उपसभापति विपक्ष का ध्यान रखेंगे और उन्हें अपनी बात रखने के लिए सदन में पर्याप्त समय देंगे। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि अपने तीसरे कार्यकाल में श्री हरिवंश लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखने के लिए विपक्ष को अधिक महत्व देंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद 2019 से रिक्त होना उनके लिए पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि आखिरकार यह पद 7 साल से रिक्त क्यों है, यह संविधान की भावना के विपरीत है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने श्री हरिवंश के निर्वाचन के प्रस्ताव को पारित किए जाने के दौरान सदन से वॉकआउट किया। श्री हरिवंश के समर्थन में कुल 5 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव श्री नड्डा ने पेश किया, दूसरा प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पेश किया जिसका ब्रजलाल ने समर्थन किया, तीसरा प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया जिसका समर्थन सुरेंद्र सिंह नागर ने किया, चौथा प्रस्ताव जदयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पेश किया जिसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन दिया। राष्ट्रीय लोकदल सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का शिवसेना सांसद मिलिंद मुरली देवरा ने समर्थन किया। विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी श्री हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी और पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके आचरण की सराहना करते हुए सदन में विपक्ष को अधिक अवसर देने का आग्रह किया। द्रमुक की ओर से तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, राजद नेता मनोज झा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जदयू के संजय झा, बीआरएस के वदिराजू रविचंद्रन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास और पी संतोष कुमार, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉ सरफाज अहमद, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा, IUML के अब्दुल वहाब, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, तेदेपा के मस्तान राव यादव बीधा, आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक और राघव चड्ढा, असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य तथा केसीएम सदस्य जोस के मड़ी ने भी अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से श्री हरिवंश को बधाई दी। सभापति राधाकृष्णन ने श्री हरिवंश को तीसरी बार उपसभापति निर्वाचित होने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री हरिवंश का उच्च सदन के उपसभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचन इस बात का प्रबल पुष्टि है कि उन्हें सभी दलों का विश्वास और समर्थन प्राप्त है। राधाकृष्णन ने उन्हें निर्विरोध चुनने के लिए सदन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवंत लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक और आवश्यक है, लेकिन ऐसे क्षण संस्थानों की गरिमा और मजबूती के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जब सदन एक स्वर में निर्णय लेता है। सभापति ने कहा कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना आसान नहीं है, लेकिन श्री हरिवंश ने इस जिम्मेदारी को धैर्य, संयम और निष्पक्षता के साथ निभाया है। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए श्री हरिवंश संसदीय कार्य प्रणाली की बारीकियों को समझने में मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। श्री राधाकृष्णन ने विश्वास जताया कि श्री हरिवंश आगे भी किसी समर्पण, निष्पक्षता और कर्तव्य बोध के साथ इस पद की गरिमा बनाए रखेंगे। नव निर्वाचित उपसभापति श्री हरिवंश ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वह सदन की गरिमा बनाए रखने, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और कार्यवाही सुनिश्चित कर सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अभी आप सुन रहे थे संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा।